देखते हैं आज का सबक, तफसीर सूरत अल-बकरा। और वो रब कौन है? वो रब वो है अल्लदी खलककुम, वो रब वो है अल्लदीन, जिसने तुमको पैदा किया, और अल्लदीन मिन कब्लिकुम, उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले आए, यानी तुम्हारे अबाओ अजदाद को। और वो कौन रब है? अल्लदी जाला लकुमुल अर्दा फिराशन। ये सारे रब की बातें आ रही हैं। अब कोई कह रहा है ना अपने रब की इबादत करो, जब ये हुक्म आ रहा है क्यों इबादत करें? अल्लदी खलककुम, ठीक है, और अल्लदी खलक लदीना मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले आए उनकी भी, और क्या है उसका एहसान, क्यों इबादत करनी? अल्लदी जाला लकुम अर्दा फिराशन, उसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बिछाया, बना के बिछा दिया। तुम फर्श क्या होता है? जिसको बिछा दिया जाए, हमवार कर दिया जाए, ठीक है, प्लेन कर दिया। अब आप सोचें, अगर यही जमीन होती जिसके ऊपर जैसे कील नुमा एक चट्टाने सी होती, उनके ऊपर हमारा चलना मुश्किल हो जाता, हम कैसे यहाँ पे जिंदगी गुजारते? पहाड़ ही पहाड़ होते तो हम क्या करते यहाँ पे? उसने कैसे बनाया इसको? फ्लैट कर दिया, ऐसा फ्लैट किया कि हमारे यहाँ पे रहना आसान हो गया, जिंदगी गुजारना मुमकिन हो गया, वरना कोई रास्ता ना मिलता आपको, वो चलने के लिए राह ही ना होती। तो उसने तुम्हारे लिए बिछाया, और फिर ऐसा बिछोने की तरह बिछा दिया, और ऐसा उसको प्लेन किया है कि आप देखें ना, ऐसी दलदली सी है कि पैर अंदर धंस जाएं और आप दस्ते ही चले जाएं, पैर ही ना उठे, ना ऐसी सख्त है कि आप चल ही नहीं सकते। यानी अल्लाह ताला ने कितना मोतदिल इसको रखा, फर्श बना दिया, पहाड़ी सिलसिले नहीं इसके बनाए। फिर देखें टेम्परेचर ऐसा नहीं रखा कि पैर जमीन पे रखें तो पैर ही जल जाएं, ऐसा नहीं रखा। कितना ऐसा टेम्परेचर रखा है कि जिसमें इंसान आराम से रह सकता है इस जमीन पे। और देखें बिछोना, यानी बिछा दिया, अब इसके ऊपर आप कंफर्टेबल ही रह सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। इंसान की यही है ना जरूरत कि वो एक कंफर्टेबल होके, अगर हमारा प्रॉब्लम ही होता कि यहाँ पे कैसे हम चलें, तो सारी चीजें ही छोड़ देते, आपका सर्वाइवल का ही प्रॉब्लम हो जाता। तो अल्लाह नहीं, देखो तुम अपनी जमीन की तरफ देखो कि कैसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बिछाई हुई है। इसके और भी बेशुमार बातें कुरान में आती हैं कि जमीन को अल्लाह ताला ने ऐसा तुम्हारे लिए बिछाया और ऐसा बनाया तुम्हारे लिए कि वाकई हम अगर जमीन पे गौर करने लगे, इसके अंदर क्या है, इसके कोर में क्या है, लावा है, लावा है। कभी आप बच्चों की साइंस की किताब में देखें तो आप देखें कि इसका अंदर से उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है, और आप इसके ऊपर कैसे आराम से घूम रहे हैं, कैसे मजे से फिर रहे हैं, हिलाती नहीं है इतनी, हालांकि तेज चल रही है ये सवारी आपकी, लेकिन आपको हिलाती नहीं है, आप कंफर्टेबली रहते हैं, आपको अपने ऊपर चलने देती है, खोदने देती है, बिल्डिंगें बनाने देती है, गिरा देती हर चीज को, तो क्या होता? और फिर वस्समा बिनान, और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। नजर उठा के तो जरा देखो आसमान की तरफ, कैसे अल्लाह ताला ने इसको एक छत नुमा बना दी। अब जाके साइंस को पता चला है कि वाकई हमारे ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर लेयर्स हैं, और वो लेयर्स ऐसी हैं कि सूरज की भी जो खतरनाक रेज हैं उनको हमारे तक पहुंचने से बचाती हैं। अब वो कहते हैं ना ओजोन लेयर में वो जो है सुराख हो गया है, तो अब क्या हो गया, अब इतना से सुराख से कितना मसला इनको पड़ गया, अब जाए कोई जाके उस सुराख को बंद करके आए, नहीं हो सकता। आप देखो अल्लाह ताला ने किस तरह इसको महफूज बनाया जमीन को छत देके, वरना इस कायनात में कितने और चट्टाने हैं, रॉक्स हैं जो उड़ती फिर रही हैं, कोई आके नीचे गिर सकती है, कितने मिट्योर्स हैं, कितने और प्लैनेट्स हैं, कितनी और चीजें हैं, कोई भी आके गिर सकती थी इसके ऊपर, अल्लाह ताला ने इसको एक छत बना दिया। कोई भी सितारा टूटता है, कोई चीज होती है, तो आप देखते हैं कि वो जमीन तक नहीं पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसके ऊपर लेयर्स लगाई। और इसी आसमान से वह अनजला मिनस्समा इमान, इसी आसमान से पानी को उतारा। बारिश कितनी बड़ी नेमत है कि बारिश अगर बंद हो जाए किसी जगह पर, तो आप देखते हैं उस जगह पे कैसी कहत साली आ जाती है। अल्लाह अगर बारिशों को बंद कर दे दुनिया में, तो इंसान मर जाए भूख से। आप देखें कितनी आर्टिफिशियल रेन आप कर लो, मगर वो बारिश का काम वो नहीं कर सकती जो नेचुरल रेन है। आप देखिए अफ्रीका वगैरह में क्यों कहते हैं, वहां पे बारिश नहीं होती, सिर्फ एक रीजन, कुछ उगता ही नहीं। उसके नतीजे में जानवर मर गए, इंसान भी मर रहे हैं। बारिश नहीं है तो पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है और सब्जा नहीं है, और वो जानवर ही नहीं है ना, आपको खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। तो बारिश को अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत तुम्हारे लिए बनाया, खुद बरसाने लगते ऐसी बारिश तो क्या करते, कैसे होता तुम्हारे लिए पॉसिबल? इतने टैंकर ऊपर लेके जाते आसमान पे, कितने जहाज चढ़ते आसमान पे, फिर वहां से कैसे बारिश करते? फअखरज बिही मिन थमरात रिज़्क़ लकुम, फिर निकाला इसमें से, किस में से, इस पानी के जरिए से, साथ इस पानी के, क्योंकि पानी की बात है ना, जो मोस्ट रीसेंट चीज होती है उसकी बात हो रही थी, उसकी तरफ जमीर जा रही थी। बिही इसके साथ, इस पानी के साथ, यानी मीन समरात फलों में से, रिस्क अल्लकुम तुम्हारे लिए रिस्क, तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पे अल्लाह ताला ने फल निकाले। हालांकि बहुत सारी नबातात निकलती हैं, वेजिटेशन होती है, प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीजें, जब और सब्जा भी उगता है, ग्रीनरी होती है, बहुत सारी चीजें हैं ना जो बारिश से पैदा होती हैं, लेकिन यहां पर अल्लाह ताला ने फलों की बात की है खास तौर पे। और उसकी वजह क्या है कि जितनी भी चीजें उगती हैं उनमें जो सबसे खूबसूरत, सबसे कलरफुल, सबसे मिठास वाले, मजेदार, लजीज, न्यूट्रिशन वाले, बहुत ज्यादा इसकी अफादियत है, वो फल है ना। आप देखेंगे कि बच्चे वेजिटेबल्स के लिए कितना शोर मचाते हैं, क्यों सब्जी बना ली ना, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है मगर वो वाली लज्जत नहीं हो जाती जो फलों के अंदर। अल्लाह ताला ने फलों की यहाँ पे बात की, और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये उगाए, इसके अंदर एक्चुअली अल्लाह ताला का नाज है, नाजो नाम है जो इंसान के लिए। वो कैसे? देखिए, फल कोई ऐसी हमारी जरूरत नहीं कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा है ना, फल खाए बगैर भी जिंदा रह सकते, लेकिन फलों का उगाना इसमें अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितना इहतमाम फरमाया, कितने ज्यादा इसके लिए अल्लाह ताला ने नाज उठाया। अल्लाह चाहता तो इस जमीन पर कोई, ये जैसी आपकी दवाइयों की गोलियां होती हैं ना, इस तरह की मिट्टी की गोलियां होती जिनको पानी से फांकते रहते, अंदर डालते, जिंदा तो उससे भी रह जाना था, उसमें ही प्रोटीन अल्लाह रख देता, उसी में कार्ब होती, उसी में सब चीज होती जो भी हमें जरूरत है, तो क्या फर्क पड़ना था, जिंदा तो हमने तब भी रह जाना था। लेकिन आप ये देखें, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत फल, इतनी जबरदस्त पैकिंग, और मजा ऐसा है कि हर फल का मजा अलग। तरबूज को देखें और आम को देखें, दोनों फल, दोनों ही फल हैं, लेकिन टेक्सचर में, कलर में, शेप में, साइज में, लज्जत में, हर एक चीज में डिफरेंट है। तो अल्लाह ताला ने एक दो नहीं, बेशुमार फल लगाए, किसके लिए? हमारे लिए। लकुम, तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, और तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, तुम्हारे लिए आसमान से पानी बहाया, तुम्हारे लिए निकाले समरात रिस्कन, किसके लिए? लिल जिन, हाँ, लिया फिर लिद दाबा, रेंगने वालों के लिए, लिल हशरात, नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम अल्लाह की स्पेशल कोई मखलूक को जिसके लिए अल्लाह ने ये फल निकाले, इतने प्यारे फल हैं। फिर ये भी देखें, इटसेल्फ प्यारे हैं, और सुभान अल्लाह जहां लगते हैं वो कितना प्यारा सीन है। इसीलिए तो हम किसी का बाग हो तो देखने जाते हैं, क्या वहां पे होता है, हमें दुकान पे मिल रहे होते फल, लेकिन हम कभी एप्पल पिकिंग, कभी पीच पिकिंग, कभी बेरी पिकिंग के लिए जाते हैं, क्यों? उस वो नजारे को ही आप देखते हैं तो कितना खूबसूरत होता है, कैसे लटके होते हैं और किससे निकले हैं, एक मट्टी से ही तो निकले हैं, उसी मट्टी से केला निकल रहा है, उसी से सेब निकल रहा है, उसी से आम निकल रहा है, उसी तक तरबूज निकल रहा है, और मट्टी का जरा भी जायका नहीं है अंदर, सुभान अल्लाह। तो देखते नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, हम कितनी दफा फल खाते हैं, कभी ये सोचते हैं अल्लाह तूने कैसे बनाया? अल्लाह तूने रंग कैसे दिया, ब्राउन मट्टी और सुर्ख रंग, बाहर से ग्रीन अंदर से रेड, कोई पीला कोई कोई कलर का, सुभान अल्लाह तूने कैसे ये बनाए हमारे लिए। और देखो उगाया ऐसे नहीं कि किसी गंदे नाले में गंदे पड़े हो, अब आप निकाल के लाते और धोते, किसी गार के अंदर छुपे में, दरख्तों पे लटके हुए, ब्यूटी आंखों के लिए भी जो ब्यूटी देते हैं, एस्थेटिक सेंस को भी सेटिस्फाई करते हैं, सुभान अल्लाह। तो इतनी खूबसूरती देखिए, आप पाम ट्री की खूबसूरती देखिए, अल्लाह चाहता तो खजूरें वैसे ही कहीं गिरी पड़ी होती जमीन पे, कैसे उनको लगाया, लोग पाम ट्री लगाते हैं सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से, तो दो इट सेल्फ ही कितना प्यारा है। और इन फलों की अफादियत देखें तो आप सोचते नहीं कभी कि क्यों किया होगा उसने इतना इतमाम, क्या जरूरत थी, जिंदा तो हमने वैसे भी रह लेना था, जैसे गाय वो खाती है क्या उसको कहते हैं, मतलब ग्रीन चीजें वो खाती है, इसी तरह हमें भी कोई ऐसे होते, घास होती कोई ऐसी, कोई ऐसी चीजें होती जड़ी बूटियां होती जो हम निगल जाया करते, वही ऐसी चीजें पड़ी होती जो हम पानी से मुश्किलों से उतारते हैं। अब आप ये गोलियां भी तो देखे ना, इतनी बद जायका और इतनी बुरी कि इंसान खाने लगता तो ऐसे लगता है उल्टी आ जाएगी, ये इंसानों की बनाई हुई चीजें जरा देख ले, वो अलग है, उसके अंदर वो कहते हैं न्यूट्रिशन है ऐसे, इसमें फला वाइटामिन फला ये, लेकिन आज तक खूबसूरत कोई चीज नहीं बना सके ना ऐसी कोई जायकेदार, तो जिंदा तो हमने ऐसे भी रह जाना था, लेकिन क्यों किया उसने इतना इतमाम बताएं। इससे पता चलता है ना अल्लाह को मोहब्बत है, अल्लाह ताला केयर करता है, अल्लाह ने इतना एहतमाम किया है, जिसके साथ मोहब्बत होती है उसी के साथ आप करते हैं ना, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है ठीक है आप करते हैं एहतमाम, लेकिन जब कोई खास मेहमान आ रहा हो तो फिर तो आप बैठते ही नहीं है, कहते हैं कोई चीज ऐसी ना हो जो मैं टेबल पे रखने से रह जाए, हर चीज ही बना के रख लूं, ये इतना एहतमाम क्यों, वो स्पेशल है ना आप कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान से बड़ी मोहब्बत की है, उसको बड़े उसके लिए नाज उठाए हैं, उसके लिए बड़ा कुछ बनाया है, फिर इंसान क्या करता है जब वो इन सारी चीजों को भूल के और सिर्फ चीज को देखता है और सोचता है ये बस मेरा हक है, मुझे मिली भी है, मिलनी ही चाहिए, जैसे आपका बच्चा आपके आगे खड़ा होकर कहता है ना तो क्या हुआ मुझे पाला है तो आपका काम था पालना, कौन सी बड़े काम किए आपने मेरे लिए, ओफ 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 ओफ, तो माँ बाप का दिल कट के रह जाता है। इसी तरह इंसान खड़ा होकर कहता है तो क्या हुआ ये बना दिया तो क्या हुआ, ना उसको फल खाते हुए अल्लाह याद रहता है, ना जमीन पे चलते हुए अल्लाह याद रहता है, ना बारिश को देख के अल्लाह याद आता है, ना फलों को उगते देख के अल्लाह याद आता है, कोई चीज भी अल्लाह याद नहीं दिलाती। जमीन पे तो सभी चलते हो ना और रोज चलते हो, आसमान को तो सभी देखते हो ना और रोजाना देखते हो, इतना पुरसकून कलर, यही कोई सुर्ख रंग का होता तो क्या होता, जरा 4 दिन बादल ही आ जाए तो हमारा तो एक डिप्रेशन शुरू हो गया, अल्लाह ने इतना प्यारा सूदिंग कलर रखा है इसका, सुभान अल्लाह, लेकिन देखते और अल्लाह याद नहीं आता, बारिश होती है अल्लाह याद नहीं आता, बारिश में फन भी होता है मजा भी आता है, पिकनिक पे भी जाते हैं अल्लाह नहीं याद आता, फल खाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबको याद है, इसमें इतना है इसमें ये कैल्शियम है फलाना, ये खा फल जरूर खाओ इसके अंदर बड़ी न्यूट्रिशन है, लेकिन अल्लाह फिर भी नहीं याद आता, अल्लाह ने याद दिलाया, भूली हुई बात को याद दिलाया, इंसान इस दुनिया में आके तो भूल ही गया, तुझे किसने पैदा किया, तेरे किसने ऐसे नाज उठाए, तू भूल गया, भूली हुई है ना आज इंसानियत, हम खुद भूले हुए थे जब तक अल्लाह ने नहीं याद दिलाया, हम वाकई नहीं गौर करते थे जब तक अल्लाह के कलाम ने नहीं हमें ये झंझोड़ के बताया कि क्या कर रहे हो। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तो अल्लाह के साथ निद ना बनाओ, अंदाद ना बनाओ, निद की जमा अंदाद है, निद क्या होता है, निद होता है कंपेटिटर, बराबर, अल्लाह के साथ बराबर ना किसी को करो, ठीक है, यानी किसी को अलग साथ ना खड़ा कर दो, सब कंपेटिटर समझते हैं ना। तो जिसने इतना कुछ किया है ना, उसने तुम्हें पैदा करते हुए किसी की हेल्प ली कि कोई आके उसकी हेल्प करके तुम जाके उसका शुक्रिया कर रहे हो, उसके आगे माथे टेक रहे हो, ना उसने तुम्हारे अबाउ अजदाद को बनाने में किसी की हेल्प ली, ना इसको जमीन को बिछाने में कोई हो जो उसका शरीक रहा हो, ना आसमान को बनाने में, ना बारिश करने में, ना ये उगाने में। फिर तुम क्यों उसके बराबर किसी को शरीक कर लेते हो? क्यों ऐसे करते हो कि पैदा तुम्हें अल्लाह करे और तुम माथे जाके टेको किसी कब्र के आगे? क्यों ऐसा करते हो कि तुम्हें जरूरतें तुम्हारी अल्लाह पूरी करे, खिलाए पिलाए तुम्हें अल्लाह, और चढ़ावे तुम जाके मिजारों पे चढ़ाओ? क्यों ऐसे होता है कि तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो देगे तुम जाके बुजुर्गों के नाम की दो? ये क्यों होता है? निद अल्लाह के साथ कोई शरीक ना करो। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है। एक सहाबी ने पूछा, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत जालू लिल्लाही निद्दं व हुवा खलक, कि तुम अल्लाह के साथ निद बना दो जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है। सोचो तो सही, उसने तुम्हें पैदा किया और तुम उसके साथ जाके शरीक कर लो, उसके साथ जाके कोई खड़ा कर लो कि हाँ अल्लाह तो मुझे देता नहीं है, मैं तो बड़े दिन से दुआएं कर रही थी, तो अब ये बाबा देगा आपको जिसने ये इश्तिहार दिया हुआ, 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा, महबूब कदमों में होगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, अल्लाह जाने, रिस्क के तो पता नहीं दरवाजे ही खुल जाएंगे, और कोई मुलाजमत में मसला है या कोई दुश्मन है या कोई फलां है, सभी चीजें जो आपका काम है ना वो हो जाएगा। तो पहले हमने अल्लाह से दुआएं की, फिर हमने कहा अल्लाह तो देता नहीं है, चलो अब उसके पास चलते हैं, तो आपने निद नहीं करार दे दिया उसको? अच्छा वहां पे चलो उसके पास भी नहीं जाते, अब ये जो है ये बहुत पहुंचे हुए हैं, इन बुजुर्ग के पास जाएंगे तो फिर हमारे काम होंगे। तो उनको तो शरीक कर लिया ना अल्लाह का, उनको भी अल्लाह के बराबर ठहरा लिया ना, अल्लाह के कंपेटिटर बना दिया ना, यही निद होता है। और भी एक चीज होता है शरीक करना, जो शायद पता नहीं आपने पहले कभी सुना हो या नहीं, ठीक है इनमें तो शिर्क होता ही है, इनमें तो है ही शिर्क कैसे करना, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे जाके हम पढ़ेंगे, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा और निद बनाते, ये ही लफ्ज वहां पे भी आया, अंदाद बनाते, कैसे, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं, इतनी टूट के मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह को इस पे भी गैरत आती है कि तुम अल्लाह को छोड़ के औरों के पास उनसे मोहब्बत करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई महबूब है, चाहे औलाद है, चाहे शौहर है, चाहे कोई भी हो, अल्लाह से बढ़ के किसी को भी मोहब्बत करना ये अल्लाह को गवारा नहीं है। बाज मुफसरीन ने लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल उनकी तरफ बहुत मोहब्बत से यानी उनके लिए था, तो अल्लाह ताला ने आजमा लिया फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इब्राहिम अब इसको जिबा करके दिखा, पता चले कि अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दो कि अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा है कि बेटे से ज्यादा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो अल्लाह को गैरत आती है जब इंसान, वो इंसान जिसको उसने पैदा किया अपने हाथों से, जिसके लिए इतना एहतमाम किया, वो मोहब्बतें कहीं और करता, निछावर जाके डायलॉग कहीं और बोलता है, दावे मोहब्बत के कहीं और है, मैं तेरा गुलाम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। और बाज शेरों में तो ऐसे कर दिया जाता है कि जैसे यानी मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, इतनी हद तक पहुंच जाते हैं। तो नहीं, मोहब्बत सबसे ज्यादा जो होनी चाहिए वो अल्लाह से होनी चाहिए। इसीलिए क्या फरमाया, ये कुरान की आयत है, तो मैंने अपनी तरफ से बता रही हूँ, हिब्बुनाओं का हुब्बिल्ला, जैसे अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए वैसे इनसे करते हैं। गहरत आती है अल्लाह को। क्या कभी सोचा भी कि ये भी कोई चीज हो सकती है शिर्क करने की? हाँ? मोहब्बत में तो हमने कभी भी नहीं सोचा, मोहब्बतें तो बाकी सब के लिए हैं, अल्लाह बस इबादत के लिए है। मैंने तो आपको बताया इबादत का मतलब ही नहीं समझे ना हम, इबादत में है ही इंटेंस मोहब्बत, तो मोहब्बत ही अगर उसमें से निकाल दी जाए तो फिर तो वो बस एक्सरसाइज ही है। इसीलिए परस्तिश का लफ्ज आता है, इसीलिए पूजा का लफ्ज आता है, क्योंकि सिर्फ गुलाम जो है वो बस ओबीडियंस तो कर सकता है, अपने मालिक से मोहब्बत नहीं कर सकता। इसीलिए इबादत के अंदर हम गुलामी नहीं कहते। हाँ, कॉम्पोनेंट है उसका, एक हिस्सा है, मगर वो गुलामी पूरा मतलब नहीं देती उसका। परस्तिश, उसको पूजना, और वो कहते हैं हम महबूब तुझे पूजते हैं, मैंने तेरी पूजा की, ऐसे नहीं है शेर बताए। ये क्या शिर्क नहीं है तो और क्या है? और कई लोग तो अपनी औलाद को ही पूजने लगते हैं, या उनकी मर्जी होगी तो ये है, उनकी मर्जी है, उनकी यस बस यस है, वो कह दे सूरज मगरिब से निकल रहा है तो मगरिब से निकलता ही है क्योंकि मेरी औलाद ने कह दी। तो पूजा तो आपने किसी और को ही, फिर अल्लाह को ये फिर बात पसंद नहीं है। मगर मोहब्बत करें कैसे, जिसको पहचाना ही नहीं, जाना नहीं, उसे मोहब्बत कैसे होगी बताएं? कैसे मोहब्बत होगी उससे? पहले जानो तो सही, उसको पहचानो तो सही, वो है कौन, तब तो मोहब्बत की बात आएगी। तो निद ना ठहराओ, और ये निद इसके अलावा भी चीजें हैं जो निद बनती हैं, जो शरीक बनती हैं। वो क्या चीजें हैं? मेरा नफ्स, ये सबसे बड़ा अल्लाह का शरीक बन के बैठ जाता है। आज बुत नहीं है जिनके आगे हम माथे टेकते हैं, बुत नहीं है, बाहर पत्थर के बुत नहीं है, हमारे अंदर है बुत पड़े हुए। मेरा नफ्स सबसे बड़ा बुत है, मेरी अना, मैं अपनी मैं कैसे तोड़ूं? गुलामी में तो मैं तोड़नी पड़ती है, तो वहां से इबादत का तो खत्म ही हो गया सिलसिला, क्योंकि मैं उठूं, मैं बैठूं, मेरी मर्जी, मैं चलूं खाऊं या पीऊं या ये पहनूं या ना पहनूं, ये मेरी मर्जी है, तो मैं से तो गुलामी नहीं होती फिर, हम तो मैं में ही रह जाते हैं। मैं क्या सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ, ओ भाई मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ समझूं? मुझे तो ये समझ नहीं आता, तो बस अपनी गुलामी की ना फिर, जो समझ आया बस वो किया, जो नहीं समझ आया वो नहीं किया, जो पसंद है वो कर लिया, जो नहीं पसंद है वो नहीं किया। मुनाफिकों की क्या बात हमने पढ़ी फिर? जब रोशनी होती तो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा हो जाता है फिर रुक जाते हैं, जहां पसंद आया वहां पे गया, जहां पे अपनी ख्वाहिश के खिलाफ बात है, मर्जी के खिलाफ बात है, चाहे वो सोने जागने में है, चाहे वो रहने सहने में है, चाहे वो खुशी गमी के अंदर है, चाहे वो खाने पीने के अंदर है, चाहे वो पहनने ओढ़ने के अंदर है, सब चीजों में बस मेरी मर्जी। कहीं कहीं जहां पे अल्लाह की मर्जी कोई पसंद आएगी मुझे तो फिर मैं करूंगी, तो वो भी तो फिर अपनी मर्जी हुई ना, कि जहां पे मुझे सही लगेगा बस मैंने करना वही। और कितने ही लोग हैं कुरान पढ़ के भी, सब सुन के भी, वो वहीं के वहीं खड़े रहते, क्या चीज नहीं उनको हिलाती? मैं, मेरी मर्जी, जब तक मेरी मर्जी ना होगी, असल में तो मैं ही है जो इंसान को अल्लाह के आगे नहीं झुकने देती, फिर अल्लाह की पूरी गुलामी नहीं करने देती, पूरी तरह उसकी इबादत का हक नहीं अदा करने देती, जैसे अल्लाह का हुक्म है वैसे नहीं चलने देती, वो मैं है। तो ये बहुत बड़ा निद है, ठीक है? इसी तरह और भी लोगों की निद है, मसलन है माल, मसलन शोहरत की चाहत, में इतना बड़ा शरीक है, और लालच, खानदान, मेरा खानदान ये कहता है, मेरे खानदान के अंदर ये होता है, मेरे खानदान में तो ऐसा चलता है, ऐसा नहीं चलता है, तो बाहर के बुतों की क्या जरूरत है जब हम अंदर के बुतों से ही अभी तक मुकाबले करने में लगे हुए हैं, और इसमें ही हम पूरे नहीं उतर रहे, तो फिर ये बात भूल ही जाती है कि इन्होंने तो हमें पैदा नहीं किया, मैंने क्या खुद को पैदा किया, या मेरे खानदान ने मुझे पैदा किया, या मेरे इन लोगों ने पैदा किया, या मेरी औलाद है जिसने मुझे इस जमीन पे चलना और आसमान के छत के नीचे रहना और ये सब मेरे लिए दिया है, भूल जाता है सब कुछ और उनको निद बना के बैठ जाते। तो अल्लाह ताला ने बताया ये मेरे एहसानात हैं, इसलिए मेरी इबादत करो, मेरे साथ तो किसी को शरीक ना करो। वह अन तुम तालमून, और जबकि तुम जानते हो, तुम्हें पता है ये बात, तुम मानते हो, कैसे मानना है? यानी एक तो वैसे कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बनाया, ये कैसे पता चलेगा, कैसे इसका इल्म है, और कैसे सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये अकल दी, समझ दी, दिमाग दिया, ये बताता है कि अल्लाह एक ही है जिसकी इबादत होनी चाहिए और इस कायनात का कोई मालिक नहीं है, ये बताता है, ये अकल इंसान की बताती है ना। तो इससे तुम्हें पता चलता है, अंतुम तालमून, तुम जानते हो कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, फिर भी शरीक ठहराते हो अल्लाह के, फिर भी कहीं कहीं जा जाके और लोगों को समझते हो कि ये हमें देंगे कुछ, ये हमारे वाली वारिस हैं, ये हमारी जरूरियात पूरी करेंगे। और फिर ये देखें, क्या कोई आपसे पूछ सकता है क्या दलील है भाई इस बात की कि अल्लाह ही है, उसी को मानना है, उसी की इबादत करनी है, और एक एक खुदा है, और इस चीज का तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो कहते हैं ना कि भाई क्या सबूत है, अंतुम तालमून, तुम जानते हो, क्या वाकई इंसान अपनी अकल से भी जान सकता है कि एक अल्लाह है, वो मौजूद है? क्योंकि एथियस तो कहते हैं ना, नहीं कोई भी नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है। तो क्या इसकी कोई सबूत हमें मिलते हैं? हाँ, बहुत सारे सबूत हैं। आप सोचें, अगर इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करे ना, तो वो अकल से भी जान सकता है, सिर्फ इस अकल से, कि वाकई एक खुदा है। अब इसके बारे में एक वाकया जैसे कि आपको बताती हूँ कि एक बद्दू था, उससे किसी ने पूछा। अब देखो, बद्दू देहाती लोग होते हैं ना, कोई वो पढ़ा लिखा है ना, कोई कुछ है, बस ऊंट चराते फिरते हैं अपने। उससे किसी ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह ताला है, उसकी क्या दलील है? उसने आगे से जवाब दिया जो बहुत जबरदस्त जवाब है, कि मेंगनी से ऊंट पता चल जाता है कि यहाँ पे ऊंट आया था, मेंगनी से पता चल जाता है, और पाँव के निशान जमीन पर देखकर मालूम हो जाता है कि कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। तो ये क्या बुर्जों वाले आसमान, ये रास्तों वाली जमीन, ये मौजे मारते हुए समंदर, क्या इससे नहीं पता चलता कि एक खुदा है, ये खुदा है? ये देखो कि उसने एक सिंपल सी बात से कैसा जवाब दिया। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह के वजूद की क्या दलील है? आपने फरमाया, जुबानों का मुख्तलिफ होना, आवाजों का जुदा होना, नगमों का अलग होना, ये साबित करता है कि अल्लाह है। इमाम अबू हनीफा से भी किसी ने पूछा था ना कि आप जवाब दें, बताएं, तो कहते हैं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, लोगों ने मुझे कोई बात कही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा, भाई क्या क्या चीज सोच रहे हैं आप, हमें बताएं ना कि अल्लाह के होने की क्या दलील है। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो इस वक्त एक सोच में पड़ा हुआ हूँ कि किसी ने आके मुझसे सवाल किया है, कोई मुझे पूछ रहा है कि एक बहुत बड़ी कश्ती है जिसमें तरह तरह की तजारती चीजें हैं, लेकिन ना कोई उसका निगेबान है, ना कोई चलाने वाला है, इसके बावजूद वो बराबर चल रही है, जा रही है, आ रही है, बड़ी बड़ी मौजें, और खुद बखुद उनको चीरती फाड़ती गुजर रही है, ठहरने की जगह पे जाकर ठहर जाती है, फिर चलने की जगह पे चलने लगती है, ना उसको कोई चलाने वाला है, ना उसका कोई इंतजाम करने वाला है, कोई मल्लाह नहीं है उस पे। क्या है? तो वो जो पूछने आए थे लोग कहने लगे, आपकी सोच में पड़े हुए, ये कोई अकलमंदी की बात है? कैसी बातें आप करते हैं? इतनी बड़ी कश्ती, इतना बड़ा सामान लेकर जाती है, लेकर आती है, समुद्रों में चल रही है, ना उसको चलाने वाला, ये कैसे हो सकता है, आप कैसी सोच में पड़े हैं? उन्होंने फरमाया, अफसोस है तुम्हारी अकलों पर। ये एथियस्ट थे ना जिन्होंने कहा कि तुम्हारी अकलों पे अफसोस है कि एक कश्ती तो बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती, लेकिन ये सारी कायनात, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, ये सारे सब ठीक अपने काम कर रहे हैं, और उनका मालिक और खालिक ही कोई नहीं। ये जवाब सुन के वो हक्का बक्का रह गए, वो मुसलमान हो गए। इस तरह की बहुत सारी, बहुत बेशुमार दलाइल हैं जो कि यानी हमें मिलते हैं, और इंसान गौर करे तो एक आम अकल का आदमी भी ये जान सकता है कि एक खुदा है।